नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही प्रेरक उद्बोधन पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़ें। इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे आज।
जी
देखिए, हम सबके पास अपनी एक सामान्य शक्ति तो होती है ना, रोजमर्रा के काम चलाने भर की। पर अगर जीवन में कुछ खास चाहिए, कुछ बड़ा हासिल करना हो, तो क्या ये शक्ति काफी है?
पूज्य गुरुदेव का यही कहना है कि वो जो सामान्य शक्ति है वो जीवन निर्वाह के लिए तो ठीक है, पर विशेष उपलब्धियों के लिए वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें उस असीम शक्ति स्रोत से जुड़ना ही होगा, मतलब ईश्वर से।
अच्छा, और ये जुड़ाव ये होता कैसे है? गुरुदेव ने वो कुछ उदाहरण भी दिए थे ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने समझाया कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ जाए।
जैसे वो शास्त्री जी या नेहरू जी का नाम लिया था उन्होंने।
बिल्कुल जी हाँ, तो उससे उसको लाभ मिल सकता है, सहारा मिल सकता है। वैसे ही सोचिए, अगर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से जुड़ जाएं तो तब तो असीमित संपन्नता, सफलता मिल सकती है। इतिहास में उदाहरण हैं भी, सुदामा, विभीषण, नरसिंह मेहता।
हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर सवाल उठता है कैसे जुड़ें? क्या मतलब कोई रिश्वत या चापलूसी से?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत साफ हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर जुबान नहीं देखते, वो हमारी नीयत देखते हैं, चरित्र, अंदर के भाव वो परखे जाते हैं।
तो मतलब ये सतही कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सब काफी नहीं है?
पर्याप्त नहीं है, बाहरी चीजों से ईश्वर को प्रभावित नहीं किया जा सकता, वो अंदर देखते हैं।
तो फिर असली रास्ता क्या है? क्या रहस्य है इसका?
असली रास्ता जिसे पूज्य गुरुदेव उपासना कहते हैं, उपासना यानी पास बैठना, उसका जो सार है वो है समर्पण।
समर्पण?
हाँ समर्पण, ये कोई सौदा नहीं है कि हमने कुछ चढ़ा दिया और बदले में कुछ मांग लिया। ये है खुद को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल लेना, अपनी छोटी में अपना अहंकार, उसको उस विराट सत्ता में विलीन करने की तैयारी।
हाँ, समर्पण सुनने में तो मतलब लगता है कि हाँ कर देंगे, पर ये है बहुत गहरा। इसे और कैसे समझे? कोई उदाहरण?
जी, पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए कई बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, प्रकृति से, जीवन से। जैसे आग में लकड़ी डालते हैं तो क्या होता है, लकड़ी अपनी पहचान खोकर खुद आग बन जाती है।
हाँ, सही बात है।
या जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद गिरती है तो वो बूंद नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। नदी में कोई छोटा नाला आकर मिलता है तो वो नदी का ही हिस्सा बन जाता है।
और वो पारस पत्थर वाला उदाहरण भी था शायद।
बिल्कुल, पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहा पारस नहीं बनता, पारस लोहे को बदलता है।
अच्छा,
यानी लोहा अपनी मर्जी से सोना नहीं बन सकता, उसे पारस के गुण अपनाने पड़ते हैं। सही। या जैसे पेड़ के सहारे से बेल ऊपर चढ़ती है, बिजली घर से जुड़ा बल्ब ही रोशनी देता है, टंकी से जुड़ा नल ही पानी देता है, खेत में बोया बीज जब वो गलता है तब पेड़ बनता है। इन सब उदाहरणों में एक ही बात है, अपनी छोटी सत्ता को, अपनी पहचान को उस बड़ी शक्ति में समर्पित कर देना, तभी उसकी शक्ति हमें मिलती है।
ये बात बहुत सोचने वाली है कि लोहा पारस को नहीं बदलता, पारस लोहे को। मतलब हमें ईश्वर को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश छोड़नी होगी।
बिल्कुल, कोशिश ये करनी होगी कि हम ईश्वर जैसे बने, उनके गुण, सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा, उनको अपने जीवन में उतारें। ईश्वर हमारी खुशामद या पूजा से अपने नियम नहीं बदलने वाले, बदलना हमें पड़ेगा।
और पूज्य गुरुदेव ने प्रेम और समर्पण को समझाने के लिए वो लैला मजनू की कहानी का भी जिक्र किया है।
हाँ वो कहानी बहुत मार्मिक है। जब लैला बीमार पड़ी तो हकीम ने कहा किसी का खून चाहिए, तब असली मजनू जो था वो फौरन अपना खून देने को तैयार हो गया, क्योंकि प्रेम का मतलब ही है देना, खुद को अर्पित करना।
अच्छा,
ईश्वर भी यही देखते हैं, पहले पात्रता परखते हैं, समर्पण मांगते हैं। सुदामा से थोड़े चावल लिए, शबरी के झूठे बेर खाए, गोपियों से माखन लिया, कर्ण और बलि से दान मांगा, वो पहले देखते हैं कि हम देने को कितना तैयार हैं, अपना अहंकार, अपना स्वार्थ छोड़ने को तैयार हैं या नहीं।
तो अध्यात्म की जो यात्रा है उसमें ज्ञान, कर्म और फिर भक्ति, ये समर्पण कहाँ आता है?
हाँ, अध्यात्म की तीन अवस्थाएं या सीढ़ियां कह सकते हैं, ज्ञान योग यानी जानना, जानकारी हासिल करना, फिर कर्म योग यानी उस ज्ञान को आचरण में लाना, कर्म करना, और फिर है भक्ति योग यानी प्रेम, और उसी प्रेम की पराकाष्ठा है समर्पण। गायत्री साधना को इन तीनों का संगम बताया गया है, पर भक्ति योग को सर्वोच्च अवस्था माना है। भक्ति योग मतलब खुद को ईश्वर में पूरी तरह विलीन कर देना, अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा बना लेना, यही अद्वैत चिंतन है।
अद्वैत, जहां दो न रहें, साधक और ईश्वर एक हो जाएं।
बिल्कुल, जहां मैं और तू का भेद मिट जाए।
तो इसका मतलब शक्ति के भंडार से जुड़ने का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, अपनी छोटी मोटी चाहतें, लोभ लालच, ये सब ईश्वर को सौंप दो।
हाँ, सौंप दो
और फिर उनकी बनाई इस दुनिया को, इस सृष्टि को बेहतर बनाने में लग जाओ।
जैसे वो बीज गल कर पेड़ बनता है।
एकदम सही कहा। अपने छोटे मैं को गलाकर परमात्मा के विराट उद्देश्य का एक हिस्सा बन जाना। पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि ईश्वर तो जैसे चौराहे पर खड़े हैं, पुकार रहे हैं कि कोई हमें खरीद ले।
खरीद ले
ईश्वर को।
हाँ,
और कीमत क्या है?
कीमत है स्वयं को पूरी तरह उनके हाथों बेच देना, समर्पित कर देना। जैसे एक स्त्री पति को अपना सब कुछ सौंप कर, समर्पित होकर उसे पूरी तरह अपना बना लेती है, उसे पा लेती है।
तो अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है,
छोटे से अहंकार को गलाकर ईश्वर के गुणों को खुद में धारण करके उनकी इच्छा पूरी करने वाले बनना चाहते हैं।
हाँ।
यही असली कसौटी है समर्पण की, और फल भी यही है। इसी रास्ते से व्यक्ति की जो सीमित शक्ति है वो उस असीम शक्ति के भंडार से जुड़ पाती है।